क्या करना चाहते हो?
पहले श्रील महाराज जी ने आज्ञा दी थी उद्धव क्यारी के विषय में वर्णन करने को जिस प्रसंग में शुरुआत की गई, जबकि ब्रजविलासी श्याम सुंदर 11 वर्ष तक ब्रज में लीला करते हुए मथुरा में गए और मथुरा में जाकर के भाव विवल होकर उद्धव जी को प्रेरणा दी ब्रज में जाने की। कृष्ण स्वयं ब्रज में क्यों नहीं गए? क्या कारण है जो कि उद्धव जी को भेजा? ब्रज में जाने से कृष्ण ने गोपियों को ये सांत्वना दी थी कि आयास से आज जा रहा हूं, कल रह करके परसों आ जाऊंगा। और मस्तक पर हाथ धरते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की और शपथ दिलाया, सब कुछ किया, फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? कृष्ण के आने में क्या परेशानी? तो कहते हैं कृष्ण यदि जाए तो फिर से आ नहीं पाएंगे, और दो चार दिन के लिए जाए तो उससे गोपियों की सांत्वना नहीं होगी और भी विरह अग्नि बढ़ जाएगी। इसलिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा। दूसरी बात है कि मथुरा में कोई सुनने वाला या बोलने वाला या समझने वाला नहीं। गोपियां एक दूसरों से अपने विरह की बात कहकर हृदय को हल्का कर लेती, परंतु मथुरा में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके सामने कुछ सुनाए। तब कृष्ण ने उद्धव को सोचा, चयन किया कि यदि उद्धव ब्रज में जाए और वहाँ जा करके कुछ सीख करके समझ करके आए तब उनसे कुछ कहा जाए। इसलिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि ब्रज में जाए। उद्धव ने भी बृहस्पति से समस्त विद्याएं सीखी, परंतु एक पाठ का अभाव अवश्य रहा है, वह गोपियों की पाठशाला में सीखने वाला जो कि प्रेम का पाठ। यहाँ संभव नहीं है, वह गोपियों की पाठशाला में ब्रज में जाना पड़ेगा, तब प्रेम के रीति रिवाज को समझ सकेंगे और उसके सामने कहने पर तब उसे पता चलेगा। इसलिए एक व्यक्ति को भी तैयार किया जाए तो उससे काम चलेगा। कृष्ण ने उद्धव को भेजने का निश्चय किया और साथ ही साथ कहा, गच्छोद्धव ब्रजम सोम पितृणाम प्रतिमा वह। हे उद्धव, हे सोम, तुम ब्रज में जाओ, पिता माता को सांत्वना दिया और मेरे लिए कथनचन बड़े कष्ट से जो प्राण धारण कर रही हैं, मदर्थे तख्त दही का देह दही सब कुछ गोपियों ने परित्याग किया है, किसी तरह से कष्ट से प्राण धारण करके रखी हैं कि कृष्ण लौट करके आएंगे इसी आशा से। और तो ऐसे गोपियों को कुछ संदेश सुना करके उनको सांत्वना दिया, यह बात समझा बुझा करके कुछ संदेश सिखला कर भेजा। उस सोने के रात में बैठाए कृष्ण ने अपने गले की बनमाला पहना दी, पीताम्बर धारण करा दिए। देखने में अविकल कृष्ण जैसे एक ही समान रूप वयस इत्यादि सब कुछ। उद्धव जी जा रहे हैं, उद्धव जी के मन में ये भावना है ब्रजवासियों को ब्रज गोपियों को समझाने में क्या लगता है, ये तो गांव के ग्वारिया हैं, इनको समझा देंगे दो चार बातों में आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए ज्ञान की गठरी बांध करके चल रहे हैं ब्रज में। जब जाने लगे तो ज्ञान की गठरी अब कांटे में झाड़ी में लग करके वहां से फूट जाती हैं। जमुना कल कल धारा से कहती हैं, अरे तुम ज्ञान का संदेश लेकर के जा रहा है उधो ब्रज में सांत्वना देने के लिए, इससे तो सांत्वना नहीं हो सकती। कृष्ण ने उद्धव के लिए एक चमत्कार दिखलाया। जब ब्रज में जाने लगे तब कृष्ण के साथ लिप्त लीला विहार में जैसे ब्रजवासी आनंद में डूबे रहते हैं, आनंद कंद वृंदावन में उनकी लीलाओं से जैसे परिपूर्ण था, उसी स्वरूप को एक झांकी दिव्य झांकी का दर्शन करा दिया। इस प्रकार दर्शन करते करते जबकि नंद गांव में शाम को पहुंचे, चारों ओर से धूल उड़ रही है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो गया। इतने में कुछ लोग आए, बोले कि अरे ये कौन आया है सोने के रात में। निकट में पहुंचे, देखा कि ये उद्धव जी हैं, तो चिर परिचित उद्धव को पहचान लिए। तब ब्रजवासी गोपों ने उद्धव को ले जाकर नंद बाबा से मिलाया, नंद बाबा उस समय बड़े व्याकुल थे। जबकि कृष्ण गए तब से 3 महीना हो चुका था, 90 दिन तक अन्न जल खाए पिए बिना ब्रजवासियों ने इसी तरह से दिन बिताया, किसी ने कुछ ग्रहण भी नहीं। माँ यशोदा रो रही है आंखों में कपड़ा ढक करके कि कृष्ण के दर्शन किए बिना मैं और किसी को नहीं देखूंगी, अन्न जल सब ने परित्याग, नंद भवन में भोजन नहीं बनता, चूल्हे में मकड़ी का जाल बुन लिया है मकड़ी ने, समस्त घरों में धूल मिट्टी भरे हुए हैं। जहां नंदालय कितने जगमगाता था, आज सन्नाटा पड़ा हुआ है, और विरह में अधीर है नंद बाबा जसोदा बाबा। ऐसे ब्रजवासियों का अपार विरह, जहां गौएं घास खाती नहीं है, बछड़े दूध नहीं पीते, और भौरे फूलों में नहीं बैठते, कोयल कुहू कुहू आवाज नहीं करते, मोर मोरनी नाचते नहीं, ऐसी ब्रज की स्थिति बनी। नंद बाबा उद्धव जी को गले में लगा करके भाव विवल हुए, बड़े प्रेम से मिलाया। एक ब्रजवासी से आदेश दिया कि जाओ किसी के घर में कहीं थोड़ा रसोई बना करके कुछ लिया, उद्धव जी को खिलाना हो। हम लोग जैसे भूखे प्यासे हैं, ऐसे उद्धव जी भूखे प्यासे नहीं रहे, तो उनके लिए आदेश दिया। तब एक गोप अपने घर में एक गाय का दूध काढ़ा, दूध काढ़ करके उसमें चावल और चीनी से पका करके उनको खीर बना करके लाया, चीनी भी नहीं डाला, केवल चावल दूध में पका करके लाया और उद्धव को खिलाया। थोड़ी देर विश्राम करके जब बैठे तब नंद बाबा ने पूछा, कृष्ण के विषय में पूछना चाहा तो बोला नहीं जा रहा है, गदगद कंठ गला भर आया है। ऐसी स्थिति में बड़े मुश्किल से बहुत देर बाद कृष्ण ने नंद बाबा ने उद्धव से पूछा कि उद्धव बड़े भाग्य से देवकी वसुदेव बंधनों से मुक्त हुए, दुष्ट कंस अपने दैव के कारण मारा, अब यदुवंशियों की जो विपत्ति थी सारी विपत्ति समाप्त हो, अब तो सभी लोग बड़े कुशल से तो हैं, अब तो किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं है। हमारे प्रिय कृष्ण बलराम कैसे? तो कृष्ण की बात कहते ही गला रुद्ध हो गया, बोल नहीं पाए, आंखों की आंसू से बहते जा रहे हैं। इस प्रकार नंद बाबा की दशा देख करके उद्धव जी तो बड़े चमत्कृत हो उठे, बोले कि ऐसे जो रो रहे हैं कृष्ण के लिए, मैं कैसे मना करूं कि आप नहीं रोए, मत रोए। और जो कृष्ण के लिए रोता है वो तो सौभाग्यवान है, तो हम क्या कहें। इस प्रकार कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम मना करें या ऐसे कहें कि आप और भी रोइए, तब सांत्वना देना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बड़े मुश्किल से उद्धव जी ने एक निर्णय लिया, नंद बाबा से कहा, बाबा आप बड़े सौभाग्यवान, आप जैसे सौभाग्यशाली और कौन होंगे। कृष्ण तो परब्रह्म है, स्वयं भगवान है, अंतर्यामी परमात्मा है, समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में, अतः वे आपके भी हृदय में है, आपसे दूर नहीं है। इसलिए बाबा आप अपने को धैर्य धारण करें, रोए नहीं। ऐसे ही उद्धव जी ने नंद बाबा को सांत्वना देने का प्रयास किया। इतने में नंद बाबा बोले, अरे उद्धव, मैंने सोचा था कि तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि हो गई है, कृष्ण के साथ रहते हुए ज्ञान में तुम परिपक्व हुए हो, परंतु तुम जैसे बालक हो और बालक की तरह बात कर रहे हो। मेरे जैसे दुर्भागा को तुम कह रहे हो कि मैं सौभाग्यशाली, सौभाग्यवान। अरे ये कि बालक था, आज उसे खो बैठा, वो बालक बहुत दूर चला गया मुझे छोड़कर, और मैं उनके विरह में कैसा रहूं। यदि पिता है तो सचमुच पिता है कौन? राम, दशरथ महाराज, जिन्होंने राम के लिए हा राम कहा, एक बार हा राम कहते ही उनका प्राण पखेर उड़ गया। हमारा प्राण तो अभी तक नहीं निकला, कृष्ण कृष्ण कहते हुए अभी भी मैं जीवन धारण कर रहा और उस कृष्ण को छोड़ करके रह रहा, तो हमारे अंदर प्रेम कहाँ है, हमारे अंदर वह उत्कंठा कहाँ है। इस प्रकार नंद बाबा कहते कहते कृष्ण के मधुर बाल्य लीलाओं का स्मरण करके बड़े व्याकुल हो। कृष्ण को तो हमने कभी परब्रह्म नहीं माना, न परमात्मा माना, न परमेश्वर माना। हमने सोचा हमारा बालक, अपना बालक जान करके उनको अनुशासन किया, डांट फटका लगाया, जसोदा ने कितना उसे दंड से मारा होगा, कान पकड़ा है, कितना अनुशासन किया है, तो अपना बालक जान। जब तक माता के गोदी में बैठ करके दूध नहीं पीता तब तक उसको चैन नहीं, मेरे गोद में बैठ करके मेरे मुंह से पान को निकाल लेता, चबाए हुए पान को खा जाता है। यदि परब्रह्म है तो वे परब्रह्म ही रहे, यदि उनको सुख होता है मेरे गोदी में बैठ करके खाने पीने में नाचने कूदने में, मुझे पिताजी कह करके उनको सुख होता है, तो वही सुख ही हमारा सुख है। परंतु समस्त विपत्तियों में उन्होंने बचाया, ब्रज में बड़ी बड़ी भारी विपत्तियां आई, उन विपत्तियों में उन्होंने बचाया, परंतु इस समय उनके विरह रूपी विपत्ति में कौन बचाएगा। इस प्राण निकलते समय एक बार भी उनके सुंदर सुनासी का, सुंदर मुख कमल का दर्शन हो जाए, यही एकमात्र आकांक्षा अभिलाषा है। ऐसा कहते हुए अतिशय विकल हुए और रोते रोते रात बिताई। इसी प्रकार कृष्ण चर्चा में सारी रात बीती। दूसरे दिन सुबह कृष्ण कुंड में स्नान करके उद्धव क्यारी में प्रवेश किया है। अभी रामचंद्र को बोलेंगे इस कथा को, इसके बाद
in continuation of our evening class, Maharaj ji said that he will come, but right now he felt that he was too much tired, and he showed that, see, my head is hot. He was feeling heat on his head, so it was not at all feasible that he could have come. So he did not come, and he has our instructor Shobhanand Prabhu to continue with the subject matter. Point is of discussion about Uddhav Kyari. In Uddhav Kyari, this whole context is that Krishna has sent Uddhav to Braj. Why Krishna did not come to Braj himself? There is a very big question. He is sending Uddhav because he was very much engrossed in deep memories of Braj. His heart was totally bleeding, and in such a state he should himself have gone to Braj, which was, Maharaj said, only one finger away from Mathura. This side is Braj and this side is Mathura, and if we put our two fingers, one finger will come in Mathura and another will come within the territory of Braj. So there is gap of only these two fingers, and Krishna is not going there, but he is sending Uddhava. He is replying. He sent Uddhava because still his task in Mathura was not completed. And if he would go to Braj for 2-3 days and will come again back, then Braj Gopiya, it will not satisfy to Braj Gopi. It will not help at all. If he goes there after 2-3 days, if he come again back, it will increase their fire of separation instead of satiating it. Therefore, he did not go himself. He rather sent to Uddhava. Yeah. May I have a torch in my hand?
Yes.
Why Krishna selected Uddhav to send Braj? One reason was already told in the evening. Reason was that Uddhav was quite intelligent. Here Shubhananda Prabhu is raising very important point. All the gopis in Braj are feeling very severe separation feelings in their heart. But they are together. They are talking to each other. Whatever feeling is in their heart, they are sharing to each other. And hence, by sharing, they can reduce their pain and pang to some extent. But Krishna, who is in the same extent of feeling of separation in Mathura, but alas, he is there alone. There is no one to share his pain. He cannot talk to, he cannot reveal his heart to anyone. So this has increased his pain. He thought, if I make a very close friend of mine here in Mathura, to whom I can reveal my heart and share my feelings, so I will also have some relief. So he selected Uddhava. First, he was intelligent. Second, Krishna wanted to reveal himself, so Uddhav was quite close to him, he was friendly to him, he was intelligent. And third, Maharaj told in the morning, in the evening class, I am repeating it again, that gopis' love has got two aspects. One is meeting and another is separation. Their love for Krishna is so much intense. In meeting we have got so many narrations from different scriptures and all. But what is the intense feeling of gopis for Krishna in the case of separation? How one will know? How this world will know? When Krishna has come from Braj to Mathura, whole pastime is concentrating on Krishna, that is in Mathura. And what is the state of Braj gopis will remain unrevealed to the whole universe. So in order to manifest it in front of this world, Krishna sent Uddhava to Braj so that people can know, in coming generation can know, coming sadhak can know that what is the real intense feelings of separation in gopis. Another reason which Maharaj again told, Uddhava was having some pride. What was that? He was very much intelligent. He was very close associate of Krishna. He used to sometimes give counsel to Krishna. And he thought that he is quite nearer and dearer to Krishna. He is quite intellectual. He has got knowledge. Knowledge of Paratattva in his mind. So no one is more than him. So Maharaj told in the morning that Krishna sent him that you go there and you will see what is your real position. When you will go there, then gopis will, you know, Potali. There is no any English translation of this word Potali. There is a chadar, bed sheet. You put so many luggage on it and then you bind it, and this will be a Potali. So it is a sort of bundle. Bundle has got some masculine feelings and Potali has got some So Uddhava was burdened with the Potali of Gyan on his head. Krishna wanted that he should go with this Potali to Braj. Gopis snatched that Potali, smashed that Potali into pieces and threw it, the pieces, into Yamuna. From Yamuna they went into the Prayag, where Ganga and Yamuna, they have Sangam
Ganga Sagar.
And from there, Ganga, it will go to the Ganga Sagar in sea, salty water. This is the fate of that Gyan Potali. So, for these reasons, he sent Uddhava to Braj. When Uddhava was going, he thought, oh, Krishna has given such a minor task to me. I am so much intelligent, so much intellectual person. When I talk to anyone, he gets fully convinced, rather hypnotized. And to gopis, they are these villager girls and such a innocent, unintelligent, uneducated village girl. It will be only a minute job for me to console them and to bring them round. Easily I will do and then I will come. This was the feeling and apprehension of Uddhava. When Uddhava went to Braj, just near to Braj, Krishna did a miracle for him. But he had a glimpse of Braj of that time when Krishna was present in Braj. And he saw that Krishna is there playing our flute and small calves, they are jumping here and there. Such a nice Braj. Why he did it? So that the Braj which he is going to see and the Braj which was at the time of Krishna, when Krishna was present, he could see the difference of the braj, so that he could understand the feelings of separation. This might have been in the thought of Uddhav, that Krishna is Paratattva. He has left Braj and has come to Mathura. He did not die, because he does not die, he cannot die. So if your valuable person leaves your house and go away, you will feel some separation, but after passage of some time you will get consoled automatically, and then you will get engaged into your own activities. It is never so that a people leave everything forever if someone nearer and dearer go to outside for some time and will come back. In case of death, one gets very severe miseries in heart and aggrieved, his heart gets aggrieved. But it is not like that. He never thought that what could be the extent of feeling of separation in Braj. When he saw that feeling and he compared it when Braj, when Krishna was already there, it was unimaginable for him. He went there after 90 days. It was evening time. Somehow or other he reached at Nand Bhavan. And when he reached Nand Bhavan, the same Nandalaya when he saw at the time of Krishna was there, so much glittering, so much opulent, so wonderful looking Nandalaya, today its shape was entirely different. It was very dirty. When he went inside, he found it was as if never cleaned since 90 days. Lot of dust was scattered here and there. In the stove, which is called chula, in Indian tradition you know very well this chula, where they put wood and they put fire. I think in English the translation is stove, but stove is burner, in fact a sort of burner, but chula is a big once earlier used to be there some the fire arrangement to heat up your rooms, and that was a some big yeah. So there were web net, what we call snares nets, cobweb inside that chula. All the utensils were upside down. He recognized that for last 3 months they have not cooked in their house. If someone dies in someone's house for 1 day, 2 days, 3 days, he may not cook. But after a few days they start cooking. In general it happens like this. He could not believe that for 90 days there was no cooking. And when Nand Baba saw Uddhav, he welcomed him with a very morose figure, mood. And Yashoda Ma, she did not show her face. She was covering her face with a cloth and weeping. I will not see anything else, Krishna. When Krishna is not there, I will not see anything. She has covered her face. Now, he has come. Uddhav has come from Mathura, from the city of Krishna. And he is a very close friend of Krishna. So we should welcome him, we should give him something to eat. But there is no cooking in my house. Nand Baba became in anxiety. How can I serve him? And he knew it, that in other gopis' house there was also no cooking, Maharaj said. How could he do? Then he approached some Brahman Brijvasi. Brahman Brijvasis are not so much attached to Krishna. They are attached, but they are attached to somewhere on Brahminical activities also. Those who are Brajvasi is really Gop from the dynasty of Cowherd. They are really attached to Krishna. So in those Brahman, they are in grief, but not that much. They are cooking in their house. So Nand Baba appointed some Brajvasi of that standard, that priest playing. He took some milk and boiled some rice, put it without sugar and gave it. Uddhav ate it. Now, look at the narration. Nand Baba is quite eager and anxious to know about Krishna, but he cannot speak. Then he says, how is Vasudev? How is Devaki? Navkant has been killed. That troublesome period on Jaduvanshi has now gone away. I think they must be quite happy. He asked, how is Ugrasen? He asked about each and every person. But the moment he was going to say about Krishna, he could not speak. His throat choked, tears started coming from his eyes, and he could not ask, how is Krishna? Uddhav said,
wonderful.
He could not believe it. That for Krishna, he has got such a high sentiment. He is unable to speak Krishna and weeping. Now he is saying that according to scriptures, Krishna is Supreme Personality of Godhead. And anyone shed tears for Krishna, even a small drop of tear, makes him so much fortunate that he will be considered a very advanced devotee. What should I think about him? He must be a very advanced devotee because he is weeping by thinking about Krishna. Maharaj said one thing. And I should say that he is very much fortunate. But if I say you are fortunate, he will also scold me because he is weeping. How can I call him fortunate? So he was tossing himself what to say. Then finally he said, I will go according to scripture. The scripture says that if someone weeps in lamentation of Krishna, in memory of Krishna, he is very much fortunate. Oh, Nand Baba, you are really so fortunate. He was totally, he shivered. Who? Nand Baba. That he is calling me fortunate. How come? I am weeping. I am just thinking that why I am alive and he is calling me fortunate. He said, Nand Baba, you are very much fortunate. That Supreme Personality of Godhead, he came as your son. He said, Uddhav, I thought that you are disciple of Brihaspati and having association with Krishna for such a long time, you must have become very much intelligent. But what has happened to you today? You are calling me fortunate? I have lost my son. I am bereft. I am totally bereft from my bereft of my son. And you are calling me fortunate? And fortunate was Ram's father, Dashrath. When Ram went from Ayodhya, he died. I am most unfortunate because I am alive. Now you are reminding me I am more fortunate because Krishna is Supreme Personality of Godhead and he came as my son. I don't believe it. I never believed it. Because he used to weep for milk, breastfeeding from Yashoda. Unless Yashoda will give him milk, he won't stop crying. When I used to eat pan, you know, beetle, he will just take it out from my mouth and will eat it. These are not symptoms of Supreme Personality of Godhead. I don't believe it. But you are disciple of Brihaspati. If you say this thing, that he was Supreme Personality of Godhead, then of course, I am more unfortunate. Because if someone was having, Maharaj gave this example, a diamond with him, someone gave him a diamond, and he did not know that it was diamond and just thinking it is a piece of glass, he kept it somewhere negligently. And someone stole it. Then another person comes and said, where is that diamond I gave you? I said, what diamond? Oh, that piece of glass I gave you, that was diamond. when the person who kept it as a glass will come to know that it was diamond and he has lost it, will he be fortunate or unfortunate? He will feel himself more miserable, most unfortunate. So you are calling me fortunate. This is the talk between Uddhav and Nanda Baba. He said, oh, I did very big mistake saying him fortunate. So what should have I said? I should have said him unfortunate. He could not decide and he stopped talking to Nanda Baba because he said that I will get entrapped if I talk anything to him. They kept on talking whole night. Now in the morning, he got up. Early in the morning, he went and took bath. And he went to Uddhav Kyari.
जब कृष्ण गए थे उस समय समस्त गोपियां कृष्ण के रथ को घेर करके मूर्छित हो गई। ऐसे समय में कृष्ण ने उन गोपियों को सांत्वना देते हुए समझाया था कि आयास से मैं अवश्य आऊंगा। तो इस प्रकार कृष्ण तो लौटे नहीं और कृष्ण जब रथ में बैठे अक्रूर जी ने रथ को इधर उधर घुमा करके निकाल लिया। उस समय गोपियां चलते चलते उस वन में जा करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी और तभी से लौटे नहीं। ब्रज गोपियों की क्या स्थिति है कि वृषभानुनंद ने राधा जी को फूलों के सेज में सुला दिया। उनको देखने में एक बराबर लग रहा है, फूल से बराबर हो गया है, इतना क्षीण दुबली पतली हो गई। विरहिणी प्रेम उन्मादिनी। ब्रज गोपियों की अवस्था भी वैसी है, कृष्ण के विरह में अतिशय अधिक। जब उद्धव जी रात ले करके वन में प्रवेश किया तब उस रात को देख करके कुछ गोपियां जो सामने थी वो निकट में आई, बोली कि अरे ये कौन है, देखने में कृष्ण जैसा ही लग रहा है परंतु ये तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण को हम पहचानते हैं, ये तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण में कृष्ण से देखने में अभिकल एक ही स्वरूप जैसा लगता है कि कृष्ण का कोई प्रिय दूत यहाँ पर आया है, कोई प्रिय संदेश लेकर के आया है। तो ऐसे कृष्ण का संदेश वाहक जान करके गोपियां निकट में आई, बोले कि अब ये सोने के रात में बैठ करके क्यों आया है, अरे वही अक्रूर आया है या और कोई, पहले आया था हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण को लेकर चला गया, अब किस लिए आया है, सुना है मथुरा में कंस मारा गया है तो कंस के मरण के पश्चात अब उसके पिंड दान करने के लिए पिंड में कुछ मिला नहीं। तो ब्रज गोपियां अब कृष्ण के विरह में अधीन हैं तो उनके हृदय पिंड को लेकर के वहां पिंड दान होगा, तर्पण होगा, इसलिए यहाँ पर फिर से आया है गोपियों के हित पिंड को लेने के लिए। तो इन बातों को सुनकर उद्धव जी चमत्कृत हो उठे, बोले कि ऐसी बात तो जीवन में कभी सुनाई नहीं, अरे ऐसी प्रेम की अनोखी बातें होती हैं। उद्धव जी तो एक बार चकरा गए, दूसरी बार गोपियां जब आई निकट में आ करके उद्धव से कहा, प्रिय उद्धव तुम यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो भूले भटके आया है, ये रास्ता तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें जाना है तो पिता माता के पास में जाओ, कृष्ण ने स्वयं नहीं आया और तुम्हें भेज दिया है, अतः तुम पिता माता की सांत्वना देने के लिए वहां जाओ, वे तुम्हें देख करके खुश हो जाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे, यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, काम कहाँ पड़ता है, जहाँ कोई विशेष जरूरी होती है वहां पर स्वयं को जाना होता है, स्वयं जा करके उनसे बातें करते। तो कृष्ण को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, अब तो पहले ग्वालियर थे आप तो क्षत्रिय कुल में आ गए, अब वैश्य से आप क्षत्रिय में आ गए, अब यहाँ गायों के पीछे पीछे चलते थे, वहां जाकर के अब राजा बन गए हैं, मथुरानाथ बन गए, अब राजा हैं वहां के। अतः उनको आने की क्या आवश्यकता है, उनके नौकर चाकर जब सोने के रात में घूमते फिरते हैं तो उनकी क्या स्थिति हो। तो ये दिखलाने के लिए, अपना जौलुस दिखलाने के लिए यहाँ सोने का रथ भेज दिया उद्धव। अब उन्होंने तो समस्त सुहृद भाव बंधु भाव को तो तोड़ लिया है,